रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। पिछली बार रामायण की कथा में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने बाल लीलाएं की, कौशल्या को आनंद दिया, दशरथ महाराज को आनंद दिया, और फिर कैसे वशिष्ठ मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया, फिर थोड़े बड़े हुए और अब विश्वामित्र मुनि आए और विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज से राम को ले जाने की मांग की और दशरथ महाराज ने अंततः स्वीकार किया और दोनों राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ फिर उनके आश्रम की ओर चले। ये कथा हम लोग कह चुके हैं, अब इसके आगे की कथा कहेंगे। तो जब श्री राम को लेकर विश्वामित्र मुनि चले तो कुछ ही समय बाद उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि मैं आपको कुछ विद्या अर्पण करना चाहता हूँ, कुछ अस्त्रों की विद्या देना चाहता हूँ। वैसे तो भगवान श्री राम सारी विद्याओं के स्रोत हैं, सारी विद्या उन्हीं से आती हैं, फिर भी लीला कर रहे हैं एक साधारण मानव की। ये रामायण की कथा सुनते हुए हमें ये स्मरण रखना चाहिए दो बातों का। पहली कि जिनकी कथा हम सुन रहे हैं वो भगवान हैं, और दूसरा वो मानव की लीला कर रहे हैं, इसलिए लीला के लिए जो भी आवश्यक है उसको वो करते हैं। कभी कभी भ्रम में भी डाल देते हैं, बड़े बड़े देवता भी भ्रम में हो जाते हैं। आपको स्मरण होगा कि ये कथा प्रारंभ करने के पहले हमने एक संवाद का वर्णन किया था पार्वती देवी और शिव जी का, जहाँ पार्वती देवी बड़ी भ्रमित हो गई थी और पूछने लगी कि ये कैसे भगवान हैं, इनको कैसे हम इनकी आराधना कर सकते हैं, ये तो खुद ही भूल जाते हैं कि ये भगवान हैं, तो अगर ये भूल जाते हैं तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न पार्वती देवी ने शिव जी से किया था और जिसके उत्तर में शिव जी ने श्री राम हृदयम का वर्णन किया था, ये हमने पहले वर्णन किया है। तो ऐसे कभी कभी भ्रम हो जाता है, इसीलिए इन कथाओं को, रामायण की कथा को सुनते हुए ये भूलना नहीं चाहिए कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान एक साधारण मानव की लीला कर रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने उन्हें दो बड़ी महत्वपूर्ण विद्याएं सिखाई जिनका नाम था बला और अतिबला। वो कहने लगे कि ये दोनों ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। अब ये विद्याएं ब्रह्मा जी की पुत्री कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, सब कुछ इस जगत में उन्हीं से तो आता है, उनके द्वारा ही प्रकट होता है, तो फिर विद्याएं भी उनके द्वारा प्रकट होती हैं, वेद भी उनके द्वारा प्रकट होते हैं। वैसे वेदों का ज्ञान देते उन्हें भगवान श्री कृष्ण हैं। भागवत में पहले ही कहा गया है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन फिर भी इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से तो हम यही देखते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा वेद आते हैं, ज्ञान आते हैं और सारी विद्याएं आती हैं। तो इसीलिए इन दोनों विद्याओं को, जो अस्त्रों की विद्याएं हैं, इन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया और उन्होंने उन्हें सिखलाया, रामचंद्र जी लक्ष्मण को सिखलाया और कहा कि ये विद्या सीखने के बाद आप आपको कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, आपको कभी थकान नहीं होगी, और इतना ही नहीं, अगर आप सो भी रहे होंगे तो उस समय भी शत्रु आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। और ऐसे बहुत से गुण इन विद्याओं के विश्वामित्र मुनि ने बताए कि किस प्रकार ये विद्याएं एक योद्धा को मदद करती हैं। तो फिर इन विद्याओं को ग्रहण किया और फिर आगे बढ़े। आगे चलते चलते वे सरयू और गंगा के संगम पर आए। अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है, तो जब अयोध्या से बाहर निकल रहे थे तो अयोध्या से निकलते हुए वे सरयू और गंगा के संगम के निकट आए, और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर आश्रम था। वहां पर ऋषि मुनि थे, तपस्या कर रहे थे। उस आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र ने प्रश्न पूछा, वैसे इस यात्रा में, अर्थात ये यात्रा जो अब अयोध्या से प्रारंभ हुई है और मिथिला तक जाएगी, श्री रामचंद्र ने कई प्रश्न पूछे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो पूछ रहे, ये क्या है, यहाँ क्या हुआ था, ये कौन सा स्थान है, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे। दरअसल इन प्रश्नों के द्वारा श्री रामचंद्र उस स्थान के महत्व को बतलाना चाहते हैं। भगवान ऐसे ही करते हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ ज्ञान वो खुद सीधे दे देते हैं, कुछ ज्ञान अपने भक्तों के द्वारा प्रकट कराते हैं, और कुछ ज्ञान वो लीलाओं के द्वारा प्रकट कराते हैं। तो भगवान को ज्ञान देने के अलग अलग तरीके हैं। भगवान स्वयं आते हैं, ज्ञान देते हैं, भगवत गीता के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया, ये स्वयं दिया गया ज्ञान है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा भी ज्ञान प्रकट कराते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने रामानंद राय से संवाद किया, और रामानंद राय के मुख से उन्होंने भक्ति के पर चरम सीमा की अवस्था का वर्णन कराया। हरिदास ठाकुर के मुख से उन्होंने हरि नाम का गुणगान कराया। तो ऐसे भी भगवान ज्ञान देते हैं, और फिर अपनी लीलाओं से, जैसे श्री कृष्ण ने ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, तो उन लीलाओं के द्वारा भी ज्ञान प्रदान किया, जिनको आचार्यों ने प्रकाशित किया। इसीलिए आचार्यों का महत्व है, अन्यथा हम केवल कथाओं को सुन लेंगे, कथाओं के पीछे जो गूढ़ रहस्य है, जो दर्शन है, जो भगवान के निर्देश हैं, या भगवान जो हमें सिखलाना चाहते हैं, उसको नहीं जान पाएंगे। तो भगवान ने अपनी लीलाओं से भी हमें ज्ञान दिया। तो यहाँ भी इन तथ्यों को प्रकट करा के, इन स्थानों के महत्व को प्रकट करा के भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये जो आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है, बड़ा रम्य स्थान है, ये कौन सा स्थान है? तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये वो स्थान है जहाँ पहले शिवजी तपस्या किया करते थे। तो उन्होंने कथा सुनाई कि यहाँ पर शिवजी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते हुए एक समय कामदेव उनको प्रभावित करने आए। कामदेव की वैसे इच्छा नहीं थी शिवजी को प्रभावित करने की, क्योंकि वो जानते थे कि शिवजी की क्या शक्ति है, लेकिन फिर भी देवताओं के कहने पर, इंद्रादि के कहने पर उन्हें आना पड़ा। तो शिवजी को मोहित करने आए कामदेव। कभी कभी कामदेव को भी अहंकार हो जाता है। कामदेव सोचते हैं कि मैं इस जगत में हर एक को मोहित कर सकता हूँ, इसीलिए वो शिवजी को भी मोहित करने का प्रयास करने के लिए आए। शिवजी ध्यान मग्न थे, समाधि में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, नाम का जप कर रहे थे, और ऐसे समय में कामदेव ने अपने तीरों को चलाना प्रारंभ किया, प्रभावित करने का प्रयास किया, और शिवजी ने अपनी आँखों को खोला, अपने नेत्रों को खोला, और जैसे ही कामदेव को देखा तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। ये प्रमाण है कि जहाँ पर शुद्धता होती है वहाँ पर अधर्म कार्य नहीं करता। कभी कभी इस जगत में हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्थानों में जहाँ पर धर्म ही होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, उन स्थानों पर भी आधार्मिक कार्य हो जाते हैं। तो अधर्म कैसे स्थान पा लेता है ऐसी जगहों पर? केवल अशुद्धता के कारण। जहाँ शुद्धता है वहाँ अधर्म स्थान नहीं पाता है। ये इस लीला का संदेश है। कामदेव सारे जगत को मोहित करते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों को मोहित कर देते हैं, स्वयं विश्वामित्र को मोहित कर चुके हैं। तो ऐसे तपस्वी जो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, अपने इंद्रिय निग्रह करते हैं, आत्मसंयमी बनते हैं, आहार निद्रा इत्यादि त्याग देते हैं, लेकिन कामदेव से मोहित हो जाते हैं। मगर वो कामदेव जब शिवजी जैसे शुद्ध वैष्णव के समक्ष आते हैं तो वो पराजित हो जाते हैं। इसके द्वारा हम ये सीखते हैं कि जीवन में जितनी शुद्धता हम लाएंगे उतना ही अधर्म से बच पाएंगे। अधार्मिक कार्य अशुद्ध स्थान पर ही हो सकते हैं। शुद्ध स्थान पर केवल धर्म की स्थापना होती है, भक्ति की स्थापना होती है। तो हमें अपने जीवन में, अपने स्थान पे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर, हम जिस वातावरण में कार्य करते हैं वहाँ पर सब शुद्धता का वातावरण रखना चाहिए। जब हम शुद्ध रहते हैं तो फिर हम ऐसे गलत चीज़ों से, अधर्मों से बच सकते हैं। तो कामदेव को देखते ही भस्म कर दिया शिवजी ने। और क्योंकि कामदेव ने अपने अंग को त्याग दिया इसलिए उनका एक नाम पड़ा अनंग। कामदेव का और एक नाम है अनंग। और जिस स्थान में ये लीला हुई, ये घटना हुई, जहाँ कामदेव को जला दिया गया, तो उस स्थान का नाम हुआ अंगदेश। तो अंगदेश इस स्थान पर कामदेव को शिवजी ने जलाया था। तो वहाँ उस स्थान का उन्होंने वर्णन किया, कुछ समय वहाँ पर रहे, रात्रि का समय था तो उसी स्थान पर रहे और फिर अगले दिन चल दिए। सुबह उठकर गंगा पार करनी थी तो वहाँ के ऋषि मुनियों ने नाव की व्यवस्था कर दी और कहा कि आप नाव में बैठकर गंगा पार कर लीजिए। तो जब गंगा पार कर रहे थे, अभी गंगा के मध्य पहुँचे थे, तो बहुत जोर से आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज मानो गंगा के मध्य में नीचे की ओर बड़ी जोर से दो नदियों का मेल हो रहा है। तो रामचंद्र जी ने पूछा विश्वामित्र मुनि से कि कैसी आवाज है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दो बड़ी तेजी से बहती हुई नदियां मिल रही हैं। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये सरयू नदी अब यहाँ गंगा में आकर मिलती है, ये संगम है। जिस स्थान पर अब हम हैं वहाँ नीचे दो नदियों का संगम है। और ये सरयू नदी का भी इतिहास उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ एक सरोवर है जिसे मानस सरोवर कहते हैं। तो उस सरोवर से निकली हुई ये नदी है जिसे सरयू कहते हैं। सरोवर से निकली इसलिए सरयू कहलाए। तो सरयू नदी ये जो अयोध्या के पास से बहती है अब यहाँ पर गंगा में मिल जाती है, ये संगम है उसका। तो फिर आगे चलते रहे रामचंद्र जी गंगा नदी पार करके एक बड़े ही विशाल वन में पहुंचे। दो वनों को उन्होंने पार किया। एक वन तो बड़ा समृद्धशाली था, बड़ा सुंदर था, रमणीय था। ये वो स्थान था जहाँ इंद्र का अभिषेक किया गया था, ऐसा विश्वामित्र मुनि ने समझाया। इंद्र ने जब वृत्रासुर की हत्या कर दी तो उसको पाप लगा और कई अन्य कारणों से भी, तो अपने पापों को धोने के लिए वो इस स्थान पर आए थे। और फिर यहाँ पर ऋषि मुनियों ने उनका अभिषेक करके उनको पाप से मुक्त किया था। तो ये एक स्थान हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरे वन में प्रवेश किया श्री रामचंद्र जी ने, तो बड़ा भयानक वन था वो, और वहां पर बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। प्रवेश करते ही हृदय में भय उत्पन्न हो जाता था। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ये क्या वन है, बड़ा वीरान लग रहा है, सुनसान लग रहा है, कोई ऋषि मुनि दिखाई नहीं दे रहे। ये वो समय था जब वनों में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, बहुत तपस्या। तो उन्होंने बताया कि ये ताटका का वन है। ताटका ये एक बहुत भयंकर राक्षसी थी, बड़ी शक्तिशाली, 1000 हाथियों का बल था ताटका में। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि वैसे तो साधारणतः स्त्रियों में इतना बल नहीं होता, ये ताटका में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि दरअसल ऐसा हुआ था कि एक यक्ष थे सुकेतु। तो सुकेतु ने बड़ी तपस्या की, वो चाहते थे कि एक पुत्र प्राप्त हो, बड़ा शक्तिशाली। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि ये जिस पुत्र की कामना कर रहा है, इस पुत्र से ये पृथ्वी पर उत्पात करेगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे पुत्री प्रदान की, पुत्र नहीं दिया। तो सुकेतु संतुष्ट नहीं हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, नहीं नहीं, मेरी तो इच्छा पुत्र की थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, पुत्री है, लेकिन पुत्री को ही मैं 1000 हाथियों का बल दे देता हूँ। तो उन्होंने दिया। आगे चलकर सुकेतु ने अपनी इस पुत्री, ये बहुत सुंदर थी, ताटका, जिसका नाम ताटका था, बहुत सुंदर थी ये। तो आगे चलकर उसका विवाह हुआ सुंद नामक एक यक्ष से। वो भी बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन एक समय उसने अगस्त्य मुनि के प्रति अपराध किया और अगस्त्य मुनि ने उसको शाप देकर मार डाला। तो जब उसके पति को मार दिया गया तो ताटका को बड़ा क्रोध आया और ताटका भागी अगस्त्य मुनि की ओर, उसने आक्रमण किया। वैसे ताटका का एक पुत्र भी था, मारीच, वो ताटका का पुत्र था। तो उसको तो अगस्त्य मुनि ने शाप से पहले ही राक्षस बना दिया था। अब ये भी भागी मारने के लिए, तो अगस्त्य मुनि ने इसको भी श्राप दिया और कहा, तुम भी राक्षसी हो जाओ, भूल जाओ अपने इस सुंदर रूप को, अपने अस्तित्व को, और अब राक्षसी बनकर रहो। तो क्योंकि उसके अंदर 1000 हाथियों का बल था और अब वो राक्षसी हो गई, वो भी मनुष्यों को खाने वाली, तो फिर बहुत उसने आतंक मचाया। तो वहां कोई उसको मारने वाला नहीं था। तो अब श्री रामचंद्र से विश्वामित्र मुनि ने कहा कि देखो, तुम्हें इस ताटका का वध करना है। अब श्री रामचंद्र जी लीला में हैं, पहले असुर को मारने वाले हैं और वो भी एक स्त्री। वैसे कृष्ण ने भी पहले असुर एक स्त्री को ही मारा था, पूतना को। तो अब रामचंद्र जी सोच रहे थे कि स्त्रियों को मारना तो ठीक नहीं है, वैदिक धर्म के विरुद्ध है। वैदिक धर्म में कहा गया है कि हमें कुछ लोगों की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, वृद्धों की रक्षा होनी चाहिए, बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, गायों की रक्षा होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। ये किसी भी अवस्था में वध्य नहीं है, इनका वध नहीं किया जाता। गायों का वध नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों का नहीं होना चाहिए, वृद्धों का नहीं, बच्चों का नहीं, और स्त्रियों का नहीं, क्योंकि ये 5 लोग हमारी सभ्यता को बनाते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति पारिवारिक परंपराओं को आगे चलाते हैं, इसीलिए वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता में कहा है कि जब सारे लोग मारे जाएंगे तो कुल परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, कुल परंपराएं समाप्त हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। इसीलिए कुल परंपराओं को चलाने के लिए वृद्धों की आवश्यकता है। भविष्य अच्छा हो इसीलिए बच्चों का संरक्षण होना चाहिए। वैदिक ज्ञान का प्रसार हो इसीलिए ब्राह्मणों का संरक्षण होना चाहिए, नहीं तो वैदिक धर्म को कौन स्थापित करेगा, कौन रीति रिवाजों को स्थापित करेगा, कौन यज्ञ इत्यादि करेगा, और यज्ञ नहीं होंगे तो भगवान की संतुष्टि कैसे होगी। हाँ, अलग अलग समय में अलग अलग युगों में यज्ञ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान केवल यज्ञ से ही संतुष्ट होते हैं। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ का एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि, बस इसके लिए यज्ञ किया जाता है। देवी देवताओं का यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो केवल कुछ भौतिक आपूर्ति करने के लिए, जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा तीसरे अध्याय में, भगवान कहते हैं कि मैंने देवी देवताओं की रचना की है, मनुष्यों की रचना की है, अब मनुष्य देवी देवताओं की आराधना करें और फिर देवी देवताओं उनको जो भी सुविधा चाहिए, जो भी उनको चीजें चाहिए इस जगत में वो प्रदान करें। तो जहां तक इस भौतिक जगत में बने रहने का सवाल है, देवी देवताओं का यज्ञ होता है, लेकिन उन यज्ञों में भी अंतिम आहुति या अंतिम उद्देश्य विष्णु होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं, तब यज्ञ पूर्ण होता है। ऐसा शुक्राचार्य जी ने भी कहा है, हम भागवत में पढ़ते हैं शुक्राचार्य जी भगवान वामन देव से कहते हैं कि आपका नाम लेने से ही कोई यज्ञ पूरा होता है, क्योंकि भगवान ने उनसे कहा कि अरे अरे मैंने आपका यज्ञ खराब कर दिया, आप तो यज्ञ कर रहे थे, मैं आ गया और मैंने बंदी बना लिया बलि महाराज को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके तो नाम लेने से यज्ञ पूरा होता है, और अब तो आप साक्षात सामने खड़े हैं तो फिर यज्ञ कैसे खराब हो सकता है। तो ऐसे भगवान की महिमा है, तो यज्ञों का वर्णन है, तो यज्ञ इत्यादि करने चाहिए। तो ब्राह्मण नहीं होंगे तो वैदिक सभ्यता नहीं होगी, स्थापना नहीं होगी, और स्त्रियां नहीं होंगी, अगर स्त्रियों का संरक्षण नहीं होगा तो समाज में वर्ण संकर हो सकता है, या फिर उत्पत्ति कैसे होगी, इसलिए स्त्रियों का भी संरक्षण आवश्यक है, और साथ ही साथ गायों का रक्षण। ये पांच चीजें वैदिक सभ्यता में बद्ध नहीं है, कभी इनका वध नहीं करना चाहिए, गायों का भी वध नहीं करना चाहिए। गायों के विषय में शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है, केवल गायों के ऊपर हाथ फेर देने से व्यक्ति को लाभ हो जाता है। शास्त्रों में गाय का विशेष वर्णन किया गया है, वैसे पशु हत्या को तो एक अपराध माना ही है शास्त्र में, लेकिन गो हत्या को सबसे घृणित अपराध माना गया है। बाकी पशुओं की हत्या कभी कभी शास्त्र अनुमति भी देते हैं, जैसे जब शास्त्रों में वर्णन है कि जब व्यक्ति के लिए जीवन मृत्यु का सवाल हो तो उस समय में वो कुछ छोटे जीवों को मारकर खा सकता है, लेकिन उसके भी बहुत कड़े नियम हैं। लेकिन उस अवस्था में भी गाय को नहीं मारा जा सकता, ऐसा नियम है। तो गो हत्या ये तो बड़ा ही घृणित अपराध बताया गया, तो इन पांच लोगों की रक्षा होनी चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी सोच रहे थे कि ये तो एक स्त्री है और मैं कैसे इसका वध कर सकता हूं। इतिहास पूछा विश्वामित्र मुनि से, कैसे ये इतनी शक्तिशाली हुई। विश्वामित्र मुनि ने इतिहास बताया और कहा कि देखो तुम इसका वध कर देना, हिचकिचाना नहीं, ये नहीं सोचना स्त्री है, क्योंकि पूर्व में भी इतिहास में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं। और उन्होंने दो उदाहरण दिए, वाल्मीकि मुनि लिखते हैं इनको। एक उदाहरण उन्होंने दिया इंद्र का, कि पूर्व काल में इंद्र ने मंथरा नामक एक स्त्री का वध किया था, उसको मार दिया था। हाँ, ये वो मंथरा नहीं है जो आगे आने वाली है, वो तो अभी आएंगी। ये विरोचन नाम के एक असुर की पुत्री थी, तो विरोचन की पुत्री मंथरा, उनको मारा था इंद्र ने, क्योंकि वो उत्पात मचा रही थी इस ब्रह्मांड में। और उन्होंने ये भी कहा कि भृगु की पत्नी, हालांकि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन भृगु पत्नी की हत्या स्वयं विष्णु ने की थी, ये भी इतिहास है। तो वो कहने लगे कि ऐसा नहीं है कि पूर्व में स्त्रियों की हत्या नहीं हुई है, जहां भी अधर्म फैलता है और अधर्म की रक्षा के लिए अगर ऐसे स्त्रियों की हत्या करनी पड़े तो विशेष अवस्था में करनी चाहिए, इसलिए तुम आदेश का पालन करो। और उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब मेरे पिता ने आपको सौंपा था मुझे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अब ये तुम्हारे लिए सर्वस्व है, जो ये कहें वो मानना, इसीलिए मैं आपकी बात का पालन करूंगा। यहां पर श्री रामचंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भक्तों के लिए प्रदान करते हैं, और वो क्या शिक्षा है, वो ये समझाते हैं कि कभी कभी गुरु के आदेश ऐसे हो सकते हैं जो हमें प्रसिद्ध नहीं बनाए, जो हो सकता है हमारे लिए जगत में निंदा लाए। जैसे स्त्री की हत्या करना, ये तो निंदनीय कार्य है, और वो भी श्री राम जैसे क्षत्रिय के लिए। लेकिन फिर भी अगर गुरु का आदेश है तो उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी यहां सिखला रहे हैं कि हाँ, स्त्री हत्या से निंदा आएगी, ये निंदनीय कार्य है, लेकिन ऐसी निंदा से बड़ा है गुरु की आज्ञा का पालन करना। अर्थात वो सिखला रहे हैं कि भक्तों को कभी कभी गुरु ऐसे आदेश दे सकते हैं जिससे उनकी जगत में निंदा हो, वो बड़े प्रसिद्ध ना हो, तो उस समय भक्त के लिए धर्म संकट हो सकता है कि अरे मैं ऐसा ही निंदनीय कार्य करूं या गुरु की अवज्ञा करूं। तो उस समय भक्त को गुरु के आदेश को चुनना चाहिए, भले ही जगत में निंदा हो, लेकिन गुरु के आदेश पालन करने से फिर कृष्ण की कृपा आती है। ये श्री रामचंद्र जी सिखला रहे हैं कि एक निंदनीय कार्य कर रहे हैं एक क्षत्रिय के लिए, वो भी राम लक्ष्मण जैसे, एक स्त्री का वध करना बड़ा निंदनीय कार्य है वैदिक सभ्यता में, वैदिक दृष्टि से, लेकिन गुरु का आदेश वो सर्वश्रेष्ठ है। हर भक्त को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन। अगर ये लक्ष्य हम करते हैं तो भले ही सारे जगत में हमारी निंदा हो, लेकिन कृष्ण के सामने हम प्रशंसनीय होंगे, कृष्ण को प्रिय होंगे, क्योंकि हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। और निंदा मान अपमान ये तो इस जगत के लिए है, जब तक ये शरीर है तब तक निंदा है, तब तक कोई प्रशंसा है, तब तक लाभ है हानि है, लेकिन जिस दिन ये शरीर चला गया तो फिर कैसी निंदा। जब आप कोई दूसरा शरीर धारण करोगे तो वहां इस शरीर की निंदा मान अपमान काम नहीं आएगा, लेकिन गुरु के आदेश का पालन किया हुआ फल वो काम आएगा, कृष्ण उसको देखेंगे। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी अपने इस लीला से ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश सभी साधकों के लिए, सभी भक्तों के लिए प्रदान कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सर्वोपरि सबसे ऊंची स्थिति गुरु के आदेश को देनी चाहिए, और फिर बाकी लोक निंदा या प्रशंसा, हाँ गुरु के आदेश से हो सकता है कार्य करने से बहुत सी प्रशंसा भी आए, तो उसको भी निंदा के समान ही लेना चाहिए। जैसे हम निंदा की परवाह नहीं करें, ऐसे ही प्रशंसा की भी नहीं करनी चाहिए। हमें केवल गुरु की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की प्रसन्नता, इसको अपने जीवन का ध्येय मानना चाहिए, उद्देश्य मानना चाहिए। अगर ये ध्येय है हमारा तो निश्चित है कि जीवन की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये ताटका किस चीज की सूचक है, जैसे हमने कृष्ण लीला का वर्णन किया था, जय श्री श्री राधा गोकुलानंद, कृष्ण लीला का वर्णन करते समय असुरों के वध जब भगवान ने किए तो आचार्यों के अनुसार एक एक असुर किसी अनर्थ को प्रकट करता है। रामलीला में भी ऐसा ही है। ताटका ये अज्ञान को प्रकट करती है, अपने सही रूप को भूल जाना, ऐसा अज्ञान, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भूल जाना, ऐसा अज्ञान, ये ताटका प्रस्तुत करती है, क्योंकि वैसे तो ताटका बहुत सुंदर थी, ताटका यक्ष पुत्री थी और राक्षसी तो नहीं थी, लेकिन अब अपने इस अस्तित्व को भूलकर भगवान पर ही आक्रमण करने जा रही थी। इसी प्रकार जीव अपने असली अस्तित्व को भूल जाता है, हम सब अज्ञान में आ जाते हैं और अज्ञान में आकर फिर हम भगवान के प्रति ही विद्रोह कर बैठते हैं, जैसे ताटका ने किया। तो अब ताटका का वध करना था, श्री रामचंद्र ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर थोड़ी सी ऐसे पीछे उसको खींच कर छोड़ दिया। बहुत भयंकर आवाज हुई, सारा जो वन था उसमें बाकी जितने भी प्राणी थे सब कांप गए। ताटका ने भी सुना और ताटका भागते हुए आई, पहले तो वो भी स्तब्ध हो गई थी इस आवाज से, और फिर भागते हुए आई, श्री रामचंद्र पर आक्रमण किया करने लगी। श्री रामचंद्र लक्ष्मण से बात करने लगे, रामचंद्र जी की इच्छा नहीं थी अभी भी स्त्री को मारने की, सोच रहे थे कि कुछ ऐसा कर दूं कि इसकी वध भी हो जाए और गुरु के आदेश का पालन भी हो जाए, वध भी ना हो और गुरु के आदेश का पालन हो जाए। तो लक्ष्मण से कहने लगे कि एक काम करता हूं, इसके हाथ पांव काट देता हूं, ये चलने योग्य नहीं रहेगी, फिर कैसे लोगों को उत्पात मचाएगी, कैसे कष्ट देगी। तो अभी रामचंद्र जी सोच ही रहे थे कि ताटका ने आक्रमण कर दिया और बहुत तीव्रता से पत्थर बरसाने लगी, धुआं फैला दिया, और विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी से कह रहे थे मार दो इसे, कोई दया मत दिखाओ इस पर, ये बहुत भयंकर राक्षसी है। तो उस समय भी रामचंद्र जी ने फिर तीर चलाया और उसके हाथों को काट दिया। वैसे तो वो मायावी शक्तिशाली थी, मायावी शक्ति थी उसमें, तो बहुत प्रदर्शन कर रही थी माया का, पूरा ढक दिया उसने रामचंद्र जी को धूल से, उसके बाद पत्थर आने लगे इत्यादि इत्यादि, कभी यहाँ प्रकट होती कभी वहां प्रकट होती। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने उसके दोनों हाथ काट दिए। अब लक्ष्मण भी कहाँ दूर रहने वाले थे, वो भी सोचे मैं भी थोड़ा कुछ मदद करता हूँ, श्री रामचंद्र जी ने हाथ काटे हैं तो लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण वैसे आगे भी नाक कान काटने में माहिर है, आगे भी देखेंगे हम लोग, दो और स्थानों पर उन्होंने नाक कान काटे हैं। तो लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए तो और उसको बहुत तीव्रता से वो चिल्लाने लगी, उसको कष्ट होने लगा, और फिर उसने अपनी मायावी शक्ति से और प्रहार किया। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने एक तीर मारा जो सीधा उसके हृदय में प्रवेश कर गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई फिर उसका स्वरूप प्रकट हुआ, ये वर्णन हुआ है अध्यात्म रामायण इत्यादि में कि फिर उसका स्वरूप प्रकट हो गया, उसने प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी को, प्रदक्षिणा की और फिर वो भगवान के धाम चली गई। तो ताटका का वध नहीं हुआ, ताटका का उद्धार हुआ, ताटका को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। ये भगवान के गुण हैं। भगवान को वैसे तो कभी कभी शत्रु कहा जाता है असुरों का, जैसे मुरारी, मुर राक्षस के अरी मुरारी कहते हैं। शिवजी को भी, शिवजी का एक नाम है काम अरी, काम अरी मतलब कामदेव के शत्रु, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जला दिया था, तो भगवान को कहा जाता है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो वो कभी किसी के शत्रु नहीं है, वध भी करते हैं तो उसका उद्धार कर देते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये भगवान की करुणा है। इसीलिए जब विदुर उद्धव से मिले और कृष्ण के विषय में चर्चा की तो उद्धव ने उनको बताया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्घाम सदा पाए रुप्य साध्वी। वो कहने लगे कि एक ऐसी स्त्री बकी पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी मारने के लिए श्री कृष्ण को, लेकिन ऐसी असाध्वी ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाली स्त्री को भी उन्होंने धात्री का स्थान दे दिए, मुक्त कर दिए। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, कौन ऐसा दयालु है कि उसको मारने के लिए आए फिर उनका उद्धार करते। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान सबके लिए समान है, हम सब भगवान के अंश हैं, चाहे हम असुर हो या सुर हो, हम सब भगवान के अंश हैं। और भगवान का सबसे संबंध है, केवल मनुष्यों से नहीं, हर जीव से भगवान का संबंध है। और हम उस संबंध को भूले हुए हैं, इसीलिए ताटका है। जैसे ताटका अपने असली रूप को भूली हुई थी, अज्ञान में थी, और भगवान ने तीर चलाया जो उसके हृदय में गया, और इससे ताटका अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी। इसी प्रकार हम अज्ञान में हैं, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल बैठे हैं कि हम कौन हैं। हम अभी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं इस जगत में, एक दृष्टि में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं हैं। क्या शक्ति है, क्या ऐश्वर्य है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। हम सबको इस बात पर चिंतन करना चाहिए, किस चीज का घमंड है हमें, किस चीज का गर्व है हमें, क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है हमारा, बहुत तुच्छ है हम भगवान के सामने। इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवता हैं, उनके सामने हम तुच्छ हैं, भगवान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतने तुच्छ होते हुए भी अहंकार बहुत बड़ा है हमारा, विशाल अहंकार है, जो हमें ये बताता है कि आप श्रेष्ठ हैं, आपके जैसा कोई नहीं इस पृथ्वी पर। हर रोज ये अहंकार होता है। आप में से जब आप लोग सुबह सुबह आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या लगता है? आईने में देखकर आपको ये आभास नहीं होता कि ऐसा पतित जीव कभी हो ही नहीं सकता? होता है आप लोगों को ये आभास शीशा देखकर? नहीं, हमें लगता है कि खैर हम श्रेष्ठ, सबसे बड़े, सबसे अच्छी चीज। हमने आपको एक बार बताया होगा कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो कि माता पिता को बहुत सुंदर लगता है बच्चा। एक बार एक इंटरव्यू में, एक आईएएस इंटरव्यू हो रहा था, तो जब एक व्यक्ति अंदर आए, थोड़े बहुत काले थे, सुंदर नहीं थे, तो इंटरव्यू लेने वालों ने देखते ही उनको कह दिया कि अरे आप तो बड़े कुरूप हैं। आप सोचिए, हम लोग इंटरव्यू देने गए हैं, कई महीनों तक बड़ी तैयारी की है, नहा धो के सेंट लगा के टाई वाई पहन कर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं रूम में, और जैसे ही प्रवेश करें बोले आप तो बड़े कुरूप हैं। अब ये तो इंटरव्यू का विषय नहीं है तो हम में से कोई होगा तो पता नहीं क्या करेगा, देखेंगे कुछ मारने के लिए मिले तो सर फोड़ दें उसका, नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, रखो अपने पास। लेकिन इस व्यक्ति ने बड़े शांति से कहा, हाँ लेकिन मेरी माँ कहा करती थी कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हूँ और उस व्यक्ति को चुन लिया गया ऐसा कहने के लिए। तो ऐसा होता है, हम सब सोचते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अपने असली पहचान को नहीं जानते। हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई बल नहीं। ये तो थोड़ा बहुत जो हम कर लेते हैं, कृष्ण बोलते हैं ये उनके विभूतियों का एक अंश मात्र है। कोई बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, श्रेष्ठ चीजों का वर्णन करते हैं, और कहते हैं मैं रसो हम अब सुकौते प्रभास्मी शशि सूर्य यो। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी श्रेष्ठ चीज है वो मैं हूं। और फिर भगवान अंत में उसको कहते हैं अर्जुन को कि ये सब तो केवल अंश मात्र है, मेरे कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भगवान है। तो भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि हम जाने कि हमारी स्थिति क्या है, हम कौन हैं, नहीं तो ताटका बन जाएंगे। ताटका ने जब ताटका को मार दिया भगवान ने, तो उसका स्वरूप प्रकट हुआ। इसी तरह भगवान जब ज्ञान के तीर के द्वारा हमारे हृदय से अज्ञान को दूर करते हैं, तब हमारा स्वरूप प्रकट होता है, तब हम जान पाते हैं हम कौन हैं। जब तक ये अज्ञान है, ये ताटका है हमारे हृदय में, तब तक हम श्री राम को जान नहीं पाते। ताटका जब पहले आई तो उसने प्रदक्षिणा नहीं की श्री रामचंद्र की, वही रामचंद्र थे, लेकिन जब तीर लगा हृदय में और उसका वध हुआ, तब उसने प्रदक्षिणा की। इसी प्रकार अज्ञान में रहते हुए हम श्री कृष्ण को जान नहीं पाते, श्री राम को देख नहीं पाते, लेकिन जब ज्ञान के तीर हृदय में जाते हैं, तब हम भगवान को जान पाते हैं। तो इसलिए ताटका वध का संदेश ये है कि हम ये जाने कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, आध्यात्मिक अस्तित्व है हमारा, जिसको भूल बैठे हैं हम। एक राक्षसी, एक आसुरी आवरण चढ़ा लिया है अपने ऊपर, तो ज्ञान के तीर से उसको नाश करें और सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को, श्री रामचंद्र जी को पहचाने, और तब हम सही दृष्टि में अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन बना ही इसीलिए है। अब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब ये सारी जिज्ञासा कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, सोना कैसे मिलेगा, मेरा जीवन अच्छा कैसे चलेगा, ये जिज्ञासा नहीं, ये तो पशु जीवन की जिज्ञासाएं हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब जिज्ञासा कीजिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, आध्यात्मिक जगत क्या है, ये जिज्ञासा। तो ताटका वध से हम लोग ये सीखते हैं। तो भगवान ने ताटका का वध कर दिया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, बड़े प्रसन्न हुए देवता, क्योंकि बहुत भयंकर राक्षसी थी, भगवान ने बड़ी सरलता से वध किया। और फिर ताटका वध के बाद रामचंद्र जी आगे चलने लगे, हम सबको ये सिखलाकर कि गुरु के आदेश का पालन ये सर्वोपरि है। निंदा प्रशंसा आदेश पालन में आएगी या नहीं आएगी, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, केवल गुरु के आदेश का पालन करना है। तो अब फिर आगे चले रामचंद्र जी ताटका को वध करते हुए, और फिर वो सिद्धाश्रम में पहुंचे। सिद्धाश्रम वो स्थान था जहां पर विश्वामित्र मुनि अपना यज्ञ कर रहे थे। वैसे सिद्धाश्रम वो स्थान था जहां पर बहुत पहले भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, ऐसा वर्णन है। जब वामन देव अवतार हुआ था तो वामन देव अवतार के पहले भगवान वहां तपस्या कर रहे थे श्री विष्णु, और जब देवताओं ने देखा कि बलि महाराज ने सब कुछ छीन, बलि महाराज बहुत यज्ञ कर रहे हैं, बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, सब कुछ हमारा छीन लिया है देवताओं का, तो फिर देवता इसी स्थान पर आए थे सिद्धाश्रम में भगवान से प्रार्थना करने कि आप रक्षा कीजिए, बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं, बस अब उस यज्ञ में आप जाइए एक वामन के रूप में, एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आप जाइए और उसे मांग लीजिए। और फिर भगवान आगे चलकर प्रकट हुए थे अदिति के गर्भ से वामन के रूप में, कश्यप और अदिति को आनंद देने के लिए। तो ये वही स्थान था सिद्धाश्रम जहां पर विश्वामित्र मुनि अब यज्ञ कर रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बहुत विघ्न होते थे, जैसे विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज को भी बताया था कि रावण अपने अनुचरों को भेजता रहता है, और यहां पर विशेष करके दो थे, मारीच और सुबाहु, और ये दोनों बड़ा तंग करते थे। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होता, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती, आहुति डालने का समय आता, तो ऊपर से सब गंदे गंदे चीजों की वर्षा शुरू कर देते, खून हड्डियां इत्यादि फेंकने लगते ताकि वो स्थान अशुद्ध हो जाए और फिर वहां यज्ञ ना हो सके। तो ऐसा करते इसीलिए विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को लाए थे। तो सिद्धाश्रम में उन्होंने प्रवेश किया, बाकी सारे जितने ऋषि इत्यादि थे उन्होंने स्वागत किया श्री रामचंद्र जी का, और फिर श्री रामचंद्र जी वहां पर रहे। अगले दिन उन्होंने उनसे कहा कि आप अब यज्ञ प्रारंभ कीजिए। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ की दीक्षा ली, और उस समय श्री रामचंद्र जी जानना चाहते थे राक्षस कब आते हैं, कहाँ से आते हैं ताकि हम रक्षा कर सकें। तो विश्वामित्र मुनि तो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ले ली थी। यज्ञ की दीक्षा ये अलग अलग रूपों में ली जाती है। एक होती है कि जहाँ व्यक्ति मौन धारण कर लेता है जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता, केवल यज्ञ के लिए आवश्यक मंत्रों का उच्चारण करता है। दूसरी दीक्षा होती है वो कहीं जाता नहीं है, एक स्थान पर बैठकर जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता वो वहीं बैठता। तीसरे प्रकार की हो सकती है कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता वो अन्न जल ग्रहण नहीं करता। ऐसी अलग अलग दीक्षाएं हैं यज्ञ के लिए ग्रहण की जाती हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने मौन व्रत धारण किया था। तो उन्होंने मौन व्रत धारण किया और उन्होंने वो बता नहीं पाए, तो अन्य ऋषियों ने बताया श्री रामचंद्र जी को कि आप जब तक यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित ना हो प्रायः 6 दिन आप रक्षा कीजिएगा। तो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण बिना कुछ खाए पिए बिना सोए 6 दिन 6 रातों तक उस यज्ञ की रक्षा करते रहे, देखते रहे कि कहां से आएंगे राक्षस, राक्षस नहीं आए। और फिर अंतिम आहुति का समय आया, अग्नि प्रज्वलित हुई बड़ी तीव्रता से, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई सारा आकाश अंधकार से भर गया, आंधी तूफान, और उस समय ये मारीच और सुभा हुआ है, बड़ी तीव्रता से आक्रमण किया इन्होंने। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बता रहे थे, वाल्मीकि मुनि वर्णन इसलिए करते हैं इसका, ये बताने के लिए कि कितने आराम से कितने शांत मन से इन असुरों का वध कर रहे थे श्री रामचंद्र जी। नहीं तो इतना भयंकर असुर आया है और श्री रामचंद्र जी बोलेंगे लक्ष्मण से कि देखो अब मैं ये तीर निकालूंगा, अब मैं इसको मारूंगा। श्री रामचंद्र जी बता रहे थे मैं कौन सा अस्त्र निकाल रहा हूं, और देखो ये जो मारीच है इसको मैं अभी 100 योजन दूर फेंक देता हूं। तो उन्होंने तीर चलाया और मारीच 100 योजन दूर समुद्र में जाकर गिर गया वहां से, और फिर दूसरा एक तीर चलाया और सुबाहु का वध कर दिया, सुबाहु समाप्त। तो सब जो ऋषि मुनि थे बड़े प्रसन्न हुए, देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रश्न ये आता है कि इस लीला से क्या संदेश देते हैं भगवान, मारीच को छोड़ दिया, सुबाहु को मार दिया। हाँ मारीच को वैसे ये भी छोड़ा था कि आगे वो फिर और कार्य करने वाला था, उसके लिए और कार्य रखा था भगवान ने भी, ये भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है तुम्हारा। लेकिन और एक दृष्टि से अगर देखें तो दो तरह के पाप होते हैं जो हम करते हैं, जिसे भगवान भक्ति में आने पर दूर कर देते हैं, एक मारीच और एक सुबाहु। सुबाहु वो पाप है जो हम समर्पण करने से पहले करते हैं, समर्पण भगवान को करने के पहले जो भी पाप हम करते हैं वो सुबाहु है, और भविष्य में जो पाप हमसे अपराध होने वाले हैं वो मारीच है। जब हम भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान की शरण आते हैं, तो भगवान इन दोनों प्रकार के पापों को दूर कर देते हैं। पहले जितने किए गए पाप हैं उनको मार देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं, उनके फलों को समाप्त कर देते हैं, और भविष्य में जो होने वाले हैं उनको दूर भगा देते हैं भक्त के जीवन से। बीमारी चोर सुबाहु है। तो भगवान की शरण लेना बहुत आवश्यक है। हम सब ने जीवन में पाप किए हैं, आज भी कर रहे हैं, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं है तब तक पाप होते रहते, हाँ, जब व्यक्ति पूर्ण समर्पण कर देता है तो फिर उसके जीवन में पाप नहीं रह जाता, फिर वो पाप पुण्य से परे चला जाता है। फिर बाहरी दृष्टि से अगर वो पाप लगता भी है तो वो पाप नहीं होता, वो भगवान की योजना होती है। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जैसे श्रेष्ठ भक्त एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं, ये तो कोई साधारण भक्त भी नहीं करेगा, लेकिन परीक्षित महाराज ने किया तो वो कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो भगवान की योजना थी। अगर पाप होता तो परीक्षित महाराज भागवत नहीं सुनते, शुद्ध नहीं होते, अपने धाम को प्राप्त नहीं करते। तो इसीलिए भक्त जब समर्पण कर देता है तो फिर पूर्व में किए गए सारे पापों को भगवान समाप्त कर देते हैं। ये हरि नाम की शक्ति के लिए भी बताया जाता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल एक बार नाम ले लेने से, ऐसा वर्णन किया है, कि इतने पाप नाश हो जाते हैं जितना व्यक्ति कर भी नहीं सकता। ये शक्ति है हरि नाम की। हरि नाम बहुत श्रेष्ठ है भगवान का नाम, इसीलिए भगवान के नाम को सतत लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे शक्तिशाली नाम को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है हम सबको, और इस नाम की महिमा ही यही है कि पूर्व जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, नाम लेने से भविष्य में आने वाली विपदाएं भी दूर हो जाती हैं। तो ऐसे मारीच और सुबाहु का भी वध भगवान ने किया, और फिर अब जब वध हो गए, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो अगले दिन सुबह जाकर प्रणाम किया विश्वामित्र को रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने, और कहा कि क्या आज्ञा है अब हम लोगों के लिए। अर्थात वो पूछना चाहते थे कि अभी और किसी को मारना है या हम चले वापस अयोध्या। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम, अब हम मिथिला की ओर जाएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जनक महाराज, और मेरी इच्छा है कि आप एक अद्भुत धनुष को देखें। मिथिला नरेश जनक के पास एक अद्भुत धनुष है, और ये जो धनुष है बहुत विशाल है, साधारण मनुष्य तो क्या देवता भी इसको उठा नहीं पाते हैं, शिव जी के द्वारा दिया गया ये धनुष है, बहुत शक्तिशाली है। तो मेरी इच्छा है तुम इस धनुष को देखो, इसका इतिहास भी है। उन्होंने बताया उस इतिहास को, हम लोग धनुष के इतिहास का वर्णन करेंगे जब मिथिला पहुंच जाएंगे, अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं, तो मिथिला पहुंच कर वर्णन करेंगे। लेकिन मिथिला पहुंचते पहुंचते बीच में बहुत सारे वर्णन हैं। जब मिथिला की ओर निकले तो श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब मिथिला जाएंगे, तो मिथिला की ओर चले। अब मिथिला जाने के लिए सारे ऋषि मुनि थे, क्योंकि यज्ञ जब होता था तो ऋषि मुनि जाया करते थे राजाओं के यज्ञ में, यही प्राय समय होता था जब बड़े बड़े ऋषि मुनि राज्य में आया करते थे, और राजा उस समय यज्ञ भी इसीलिए किया करते थे ताकि महान ऋषि हमारे राज्य में प्रवेश करें, वो आए। तो फिर विश्वामित्र मुनि इत्यादि सबके साथ वो चले, चलते चलते एक स्थान पर आए, बड़ा ही रमणीय स्थान था, बहुत सुंदर स्थान, और उन्होंने कहा कि रात्रि हम यहीं बिताएंगे, विश्वामित्र मुनि ने कहा। तो फिर वो वहां रुक गए और वहां के भी इतिहास को पूछने लगे। तो वहां का एक बड़ा सुंदर इतिहास था, उस जगह का नाम था शोणभद्र, और वहां पर विश्वामित्र मुनि ने एक पूर्व इतिहास बताया राजा कुशनाब का। राजा कुशनाब ये ब्रह्मा जी के वंशज हैं, और राजा कुशनाब बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने एक अप्सरा से विवाह किया और 100 पुत्रियां उत्पन्न की, बहुत सुंदर पुत्रियां थी 100। एक कथा बड़ी विस्तार में है, हम संक्षेप में आपको सुनाते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत सुंदर संदेश है हम सबके लिए। तो राजा की पुत्रियां एक समय विचरण कर रही थीं, बहुत सुंदर थीं, तो वायुदेव आकर्षित हो गए, और वायुदेव ने प्रस्ताव रखा पुत्रियों के सामने कि देखो मेरे साथ अगर विवाह कर लोगी तो देवी बनकर रहोगी देव लोकों में इत्यादि इत्यादि। तो पुत्रियों ने हंसी में ही उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हम तो चाहें, वाल्मीकि मुनि बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, वो कहती हैं कि आपके इस कार्य के लिए अगर हम चाहें तो आपको अभी श्राप दे सकती हैं और आप अपने इस वायु पद से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन हम श्राप देकर अपनी तपस्या का बल समाप्त नहीं करना चाहते। तो इसीलिए आप ये जान लीजिए कि हमारे पिता हैं और हमारे पिता जिससे हमारा विवाह करेंगे हम उसके साथ ही विवाह करेंगी, ऐसा उन्होंने उनको बताया। ये सभ्यता थी पहले, कुछ साल पहले तक भी, कुछ 100-200 साल पहले तक भारत में भी ये सभ्यता थी कि माता पिता जिससे विवाह करते थे वो स्वीकार कर लेते थे। अब तो ये केवल काल्पनिक कथाएं हो गई हैं, परियों की कथाओं जैसा लगता है कि माता पिता ने कहा और स्वीकार कर लिया। आगे ऐसा ही होगा भी, जब आप आगे अपने बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे उनको बताएंगे तो वो लोग कहेंगे दंत कथाएं कभी हुआ करता था ऐसा, परियों की कहानियां। तो उन्होंने कहा हम तो ऐसा करेंगे, तो उस समय वायुदेव कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और वायु, क्योंकि हमारे शरीर में भी वायु है, तो वायु ने उनके शरीरों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कि तुम्हें बहुत घमंड है अपनी सुंदरता का, तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो खैर वो वापस आए, उस समय भी उन्होंने श्राप नहीं दिया, कोई क्रोध नहीं किया। तो उनके पिता ने देखा, राजा कुशराम ने, बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्या हुआ ये सारा मेरी पुत्रियों को। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वायुदेव ने कहा था और हमने ऐसे उत्तर दिया। तो उसमें बहुत सुंदर बात राजा कुशनाभ कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने जो क्षमा कर दिया। क्षमा, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा करना सीखना चाहिए व्यक्ति को। वैसे भी इस कलयुग में जहाँ इतना सारा कलह है, इतना दंभ है, इतने युद्ध हैं, केवल ये एक गुण कम होता जा रहा है, क्षमा। तो राजा कुशनाभ कहने लगे कि क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जो दिव्य दिव्यता को प्रदान करता है, या फिर क्षमा के कारण ही शांति आ सकती है। देखिए युद्ध कब होता है, झगड़ा कब होता है, जब एक व्यक्ति गलती करता है दूसरा भी गलती कर देता है, क्षमा नहीं करता तो फिर युद्ध हो जाता है। जब परशुराम जी गए थे कार्तवीर अर्जुन को मारने के लिए, आप सबको एक कथा पता होगी, कार्तवीर अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, सहस्त्र बाहु थी उनकी, इतने शक्तिशाली थे कि रावण को भी उन्होंने बंदी बना लिया था। ये कथा आगे आएगी। जब रामचंद्र जी वापस आ चुके थे तो उन्होंने प्रश्न किया था ऋषि मुनियों से कि रावण इतना शक्तिशाली कैसे हो गया था, तो रावण का इतिहास बताया। तो फिर प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको वश में कर सके, तो उस समय कार्तवीर अर्जुन की कथा आती है रामायण में। तो कार्तवीर अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि एक समय नदी पर वो क्रीड़ा कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ और उन्होंने अपने हाथों से नदी के वेग को रोक लिया और धीरे धीरे नदी बढ़ने लगी और बढ़ते 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 उस स्थान पर पहुंची जहां रावण नदी के किनारे बैठा शिव जी की पूजा कर रहा था, आराधना कर रहा था, और पानी बढ़ता जा रहा था, रावण पूजा कर रहा था, अपने मंत्रियों को देख रहा था, भाई क्या हो रहा है देखो ये सब। तो मंत्री गए, देखा उड़ते हुए, तो देखा कि अरे कोई राजा, उसने अपने हाथ से पानी को रोक दिया है। तो आकर रावण को बताया तो रावण को बड़ा क्रोध आया, तब तक पानी पूरा आगे तक आ गया था, तो रावण को बहुत क्रोध आया। रावण गया युद्ध करने के लिए कार्तवीर अर्जुन से, कार्तवीर अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, रावण आया, रावण ने ललकारा, मैं त्रिलोकेश्वर रावण तुम्हें चुनौती देता हूँ, युद्ध करो आकर मुझसे। कार्तिक अर्जुन ने देखा अपनी पत्नी को, कहा जरा थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आता हूँ, जरा थोड़ा सा इसको कुछ समझा कर आता हूँ। तो गए और आराम से उसको पकड़ा, बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया रावण को, फिर आकर अपना क्रीड़ा करने लग गए। और रावण बेचारा जेल में अंदर बंद है। तो ऐसी शक्ति थी कार्तिवीर की, लेकिन परशुराम जी ने उसको मारा था। तो जमदाग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिता हैं, ये कथा आप सबको पता है, परशुराम जी की जब कथा आएगी तो करेंगे विस्तार से। तो जब वो चले गए मारने और हत्या करके वापस आए, तो उस समय बड़ी निंदा की जमदाग्नि ऋषि ने परशुराम की, कि ये तुमने ठीक नहीं किया, क्षमा करना चाहिए, ब्राह्मण का गुण है क्षमा, और तुमने तो ऐसे जाकर उनको मार दिया। ठीक है, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने गलती की थी, जबरदस्ती गाय को ले गए थे जमदाग्नि ऋषि के आश्रम से, लेकिन फिर भी क्षमा करना चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में कई स्थानों पर क्षमा करने के महत्व को बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दर्शाया, जगाई मधाई कितने पापी थे, ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया था उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा किया उनको। और चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी भी दी अपने भक्तों को कि आज के बाद इन्हें कोई पापी नहीं कहना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनके पापों को स्वीकार कर लिया था। गौर वर्ण था उनका, लेकिन सबने देखा कि जब चैतन्य महाप्रभु ने उनके पापों को स्वीकार किया तो उनका शरीर काला हो गया। एक आचार्य कहते हैं काला नहीं हुआ, गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए। तो ऐसे उनका शरीर हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इस क्षमा को दर्शाया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो राजा कुशनाभ यही वर्णन करने लगे कि किस प्रकार आपने जो किया अपनी पुत्रियों को, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, हमें क्षमा करना चाहिए, और ये भी एक कला है, हमें सीखना चाहिए क्षमा करना, ये कला है, और ये कला आती है सहनशीलता से। अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो हम क्षमा कर सकते हैं, सहन नहीं हुआ तो फिर क्षमा नहीं होता, फिर तो युद्ध होता है। तो व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। ये जो गुण हैं, सहनशीलता या क्षमा करना, क्रोध नहीं करना, ये सारे गुण उस भक्त में स्वतः आ जाते हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है। और इसका प्रमाण है हरिदास ठाकुर। देखिए हरिदास ठाकुर के साथ क्या क्या नहीं हुआ, 22 बाजारों में उनको पीटा गया, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा कर दीजिए, ये मुझे मार रहे हैं। और जब वो मार रहे थे, 2 बाजार 3 बाजार 4 बाजार मारने वाले थक गए, उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 या 3 बाजार के ज्यादा जीवित नहीं रहा, आप कैसे जीवित हैं। फिर मारा, 22 बाजारों में मारा। हरिदास ठाकुर ने उनके लिए क्षमा मांगी, भगवान से कहा क्षमा कीजिए इन्हें। और इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया बाद में। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखलाई हरिदास ठाकुर को महाप्रकाश लीला में कि देखो जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण अत्याचार हो रहा था, मैंने अपनी पीठ पर उसको लिया था, मैं तो आ रहा था उनको मारने के लिए, लेकिन तुमने प्रार्थना की कि इनकी रक्षा कीजिए, इनको क्षमा कीजिए। हरिदास ठाकुर उदाहरण है, 22 बाजारों में पीटा गया, क्षमा कर दिया। तो जब कर रहे थे, रामचंद्र खान ने उनको, उनकी निंदा के लिए बहुत से प्रयास किए, क्षमा कर दिए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तो ऐसे असंख्य उदाहरण शास्त्रों में हैं जहां भक्तों ने इस गुण को प्रदर्शित किया। और जब तक गुण हृदय में नहीं हो, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। सारे दुर्गुणों को रखते हुए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर अगर भक्ति बड़ी गंभीरता से करे, अगर हमारा भक्ति का स्तर हरिदास ठाकुर के समान है, तो फिर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराहा, हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा। जो हरि का भक्त नहीं है, हराव अभक्तस्य कुतो महत गुण, उसके अंदर कहां बड़े गुण होने वाले हैं। लेकिन जो भक्त है, सर्वे गुणा समासते सुरहा, उसके अंदर सारे गुण वैसे ही आ जाते हैं। तो इसलिए हमें, क्योंकि हम अभी उस स्तर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग भक्ति कर सकें। जैसे हम चार नियमों का पालन करते हैं, ये तो कोई बहुत श्रेष्ठ भक्ति नहीं है, ये सहायक है भक्ति के लिए, इसलिए हम नियमों का पालन करते हैं। जो भी चीज सहायता करे उसको स्वीकार करना है, जो चीज बाधा बने उसको त्याग देना है। ये भक्ति के दो महत्वपूर्ण नियम हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो ऐसे राजा कुशनाभ ने इन चीजों को समझाया कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। तो भक्ति का अर्थ ही यही है, नकारात्मक चीजों को त्याग देना और सकारात्मक चीजों को स्वीकार करना। जब तक हम जीवन में सकारात्मक चीजें नहीं लाते हैं, नकारात्मक जीवन हमें पीछे की ओर धकेलता है। तो इसलिए इन कथाओं से, रामायण की इन कथाओं से हमें बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो मिलती हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और इसके आगे अब रामचंद्र जी गंगा की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करने वाले हैं विश्वामित्र मुनि से। तो ये चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, एक आध कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ विवाह कर लो। हाँ तो उन्होंने डाल दिया, तो बड़ा गलत किया। उन्होंने भी उस समय धर्म शास्त्रों को बताया था, जब उन्होंने उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने धर्म शास्त्रों को बताया था कि किस आधार पर वो इस आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। धर्म शास्त्रों में कुछ अवस्थाओं में गुरु की आज्ञा अस्वीकार की जा सकती है, तो उसको पहले भीष्म देव ने बतलाया और फिर आज्ञा को अस्वीकार किया। और दूसरी दृष्टि में देखें तो उन्होंने आज्ञा को अस्वीकार नहीं किया, परशुराम जी ने उनसे कहा था या तो तुम इससे विवाह करो नहीं तो मुझसे युद्ध करो। तो उन्होंने कहा ठीक है युद्ध करता हूँ, तो आज्ञा का पालन किया। परशुराम जी ने तो यही कहा था ना उनसे कि या तो इससे विवाह करो नहीं तो मुझसे युद्ध करो, चुनाव करने के लिए कहा था। भीष्मदेव ने चुनाव कर लिया, फिर कहाँ अवज्ञा हुई। अगर वो कहते बस केवल इससे विवाह करो और वो कहते नहीं करूँगा तो अवज्ञा हो जाती। उन्होंने तो कहा विवाह करो या युद्ध करो, क्या करना चाहते हो। भीष्म ने कहा युद्ध करूंगा, तो युद्ध की। लेकिन उससे पहले उन्होंने धर्म शास्त्रों से ये बतलाया था कि किस अवस्था में, कुछ अवस्थाएं हैं जहां गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया तो कोई पाप नहीं लगता, तो उन्होंने बताकर फिर इस चीज को उन्होंने किया। ठीक है, हरे कृष्ण। Krishna, Krishna, Krishna.